તારીખ 3/5/1995 શ્રી પરમાગમસાર બોલ નંબર 210 અને 236 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 619 મૂળ કેસેટમાં હમિંગનો અવાજ આવે છે.
उसमें 210 नंबर का वचनामृत है ऊपर में. प्रथम निज स्वभाव श्रद्धा में ज्ञान में रुचि में और लक्ष्य में आए तभी इसका वीर्य स्वभाव सन्मुख स्फुरित होता रहे. यह सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका है. यही सम्यक दर्शन का उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है. सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका के विषय में गुरुदेव श्री का ये वचनामृत है. उसमें सम्यक दर्शन के पहले जो पुरुषार्थ का स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ का उत्पन्न होना होता है वो कब होता है इसका यहाँ निर्देश है कि पुरुषार्थ है उनको दो ही दिशा है, एक पर सन्मुख और एक स्व सन्मुख, तीसरी दिशा नहीं है. पुरुषार्थ मैंने वीर्य गुण का परिणमन, आत्मा में जो अनंत गुण है उसमें एक वीर्य गुण भी है, उसकी अवस्था को पुरुषार्थ कहते हैं. अनादि से जीव का पुरुषार्थ पर सन्मुख चला आ रहा है. बाह्य धर्म साधन जीव करता है और पुरुषार्थ बहिर्मुख दिशा में चलता है. पूजा करे, भक्ति करे, शास्त्र स्वाध्याय करे, व्रतादि संयम पाले, लेकिन पुरुषार्थ की दिशा कौन सी है ये महत्वपूर्ण बात है. जब तक पुरुषार्थ की दिशा बदली नहीं तो दशा भी बदलेगी नहीं. दिशा बदलती है तो दशा बदलती है. तो गुरुदेव कहते हैं कि सम्यक दर्शन पहले पुरुषार्थ स्व सन्मुख स्वभाव सन्मुख होता है और स्वभाव सन्मुख स्फुरित होता रहे, ऐसा शब्द पड़ा है. क्या लिखते हैं कि अगर जीव को स्वभाव श्रद्धा में आए, श्रद्धा में आए इसलिए वहां प्रतीति है. कौन सी प्रतीति? अनुभवांश से प्रतीति, जिसको बीज ज्ञान कहते हैं. ज्ञान में आए माने भाव भाषण में आए, और भाव भाषण आएगा तो रुचि उत्पन्न हुए बिना रहेगी नहीं. जिसको गुण की रुचि है, अरे दूसरे मनुष्य में भी थोड़ा भी गुण देखते हैं तो प्रमोद आता है. गुण की रुचि वाले को क्या होता है कि किसी में भी थोड़ा भी गुण होता है तो प्रमोद आता है कि ये गुण इसमें अच्छा है. इसका मतलब कि हमको भी ऐसा गुण होना चाहिए. जिसको गुण की रुचि है उनको अपने ज्ञान में अपना अनंत गुण का निधान, अनंत गुण का भंडार ज्ञान में प्रतिभासित होवे, जो साक्षात सिद्धपद स्वरूप है, उनको अंदर से रुचि जोर से उत्पन्न हो जाती है। ज्ञान में उसकी प्रत्यक्षता भासित होती है और वेदन प्रत्यक्षता से वो प्रत्यक्षता भासित होती है। जब बीज ज्ञान होता है यानी भाव भाषण होता है, तो आत्मा जो अनंत प्रत्यक्ष स्वरूप है, केवल ज्ञान में अनंत प्रत्यक्षता प्रकट हो जाएगी, ऐसा मूल में स्वरूप है, वो बाहर आने वाला है केवल ज्ञान में। तो तेरहवें गुण स्थान में वो अनंत प्रत्यक्ष वस्तु को ज्ञान का अनुभवांश वेदन जो प्रत्यक्ष अंश से उसको उसका पता चला, परोक्ष ज्ञान से प्रत्यक्ष स्वरूप का पता नहीं चलता, भाव भाषण नहीं होता। तो ऐसा भाव भाषण होना चाहिए, तो रुचि जो इतनी जोर से अनन्य रुचि उत्पन्न होगी, तो रुचि अनुयायी वीर्य, ये सिद्धांत है कि वीर्य रुचि को अनुसरण करता है। जब जहां तक ऐसी आत्मरुचि प्रकट नहीं होती है, वहां तक जीव को अनादि से राग की और पर की रुचि है। राग की रुचि है वो पर की रुचि है, और पर की रुचि है वो राग की रुचि है। पर में राग भी आता है और पर पदार्थ राग का विषयभूत पंचेंद्रिय का विषय भी आ जाता है। तो जिसको राग की रुचि है या पर की रुचि है, उनको आत्म स्वभाव की रुचि नहीं है, और जहां रुचि है वहां पुरुषार्थ जाएगा, ये नियम है। पुरुषार्थ को रुचि का अनुसरण होता है, और रुचि का अनुसरण करने वाले पुरुषार्थ को दूसरी दिशा में कोई मोड़ना चाहे तो मुड़ेगा नहीं। इसलिए जिसको स्वभाव ज्ञान में आया, भाव भाषण में आया, प्रतीत में आया, विश्वास में आया, प्रतीत में नहीं आया, विश्वास है, उनको रुचि उत्पन्न हो जाएगी। और एक ज्ञान में नया फैक्टर उत्पन्न हो जाएगा, वो है स्वभाव का लक्ष्य। लक्ष्य इसको कहते हैं कि जो कभी ज्ञान में से खिसके नहीं, ज्ञान में से छूटे नहीं, उसको कहते हैं लक्ष्य। जिसका स्मरण करने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि स्मरण तो विस्मरण होता है उसको करना पड़ता है, जिसका विस्मरण होता है उसको स्मरण, उसका स्मरण करना पड़ता है। जो लक्ष्य होता है वो स्मरण विस्मरण से निरपेक्ष, यानी स्मरण विस्मरण से पार होकर के लक्ष्य होता है। वो कब होता है कि जब स्वभाव ज्ञान में, प्रतीत में, भाव भाषण में, रुचि में आता है तब। और रुचि और ज्ञान में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि जिसकी जिसका लक्ष्य होवे उसकी रुचि होवे, जिसकी रुचि होवे उसका ही लक्ष्य होवे, और लक्ष्य होवे इसकी मुख्यता होवे। और किसी भी कार्य की सफलता का आधार इसकी मुख्यता पर होता है, वो हमको सांसारिक कार्य में भी सबको अनुभव गोचर है। जिसकी मुख्यता होती है वही कार्य संपन्न होता है। तो लक्ष्य में आत्मा आया, इसका मतलब यह है कि स्वभाव की मुख्यता हो गई आत्म स्वभाव की, और आत्म स्वभाव की मुख्यता होती है तो हर हालत में होती रहती है, क्योंकि लक्ष्य हर हालत में मिटता नहीं, छूटता नहीं। इसलिए चाहे सांसारिक कार्य जीव करता हो मुमुक्षु, चाहे कोई देवगुरु शास्त्र आदि शास्त्र स्वाध्याय आदि शुभ कार्य का चिंतन मन आत्मा का हो, कुछ भी हो, स्वभाव का लक्ष्य छुटता नहीं है। यही उपलब्धि भाव भाषण से होती है। ऐसे स्वभाव के लक्ष्य की उपलब्धि भाव भाषण से होती है। हाँ, उसको दूसरा संकेत कहा। 751 पत्र में कृपालु देव ने उसको उसमें दूसरा संकेत कहा। और व्याख्यान सार भाग एक में 220 में उसको अस्तित्व ग्रहण कहा है। वेदन से अपना अस्तित्व का ग्रहण हो गया कि मैं ज्ञानमयी एक आत्मा हूँ, मेरा अस्तित्व ज्ञानमयी है, रागमयी मेरा अस्तित्व नहीं है। तो ऐसा होने से जो पुरुषार्थ की पर्याय है वो स्वभाव सन्मुख स्फुरित होती रहती है सहज रूप से। ये पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, करना पड़ने का तो सवाल नहीं है, खुद ही रोक नहीं सकता, क्योंकि वो एक वेग के परिणाम है, संवेग के परिणाम है कि जिस जो उतना जोर से चलता है कि उसको रोका नहीं जाता, रोक नहीं सकते हैं उसको। हाँ, वो तो है।
उसके बाद से ये ज्ञान वेदन का पॉइंट चालू होता है।
हाँ, ठीक।
तो वो पॉइंट सब शास्त्रों में वो मिसिंग है, उसकी चर्चा नहीं की है।
कृपालु देव ने किया है उसकी चर्चा,
किया है
क्या?
बाकी शास्त्रों में ऐसी कहीं चर्चा मिलती नहीं है, जबकि मेन रोल होता है उसका ही, सत्पुरुष का और उत्कृष्ट मुमुक्षु के बीच का।
हाँ।
तो वो पॉइंट किया है उसको।
प्रश्न क्या उठाए हैं, मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि ऐसा भाव भाषण जो है वो प्रत्यक्ष सत्पुरुष के योग से होता है, इसके पहले किसी को बीज ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। बीज ज्ञान की प्राप्ति जिसको बीज ज्ञान हुआ हो इससे होती है या ज्ञानी से होती है, जो इससे आगे हैं। इसके सिवा ऐसा भाव भाषण शास्त्र पढ़ने से किसी को नहीं होता है, ये एक वस्तु स्थिति है। ये वस्तु स्थिति, ये वस्तु स्थिति ये बताती है कि प्रत्यक्ष सत्पुरुष का योग का इतना महत्व है कि इसके बिना शास्त्र पढ़ने से हमको भाव भाषण आत्मा आत्म स्वभाव का हो जाए ऐसा कभी बनने वाला नहीं है। इसलिए ये बात अंडरस्टूड है, यानी ये बात बीच में अपेक्षित समझ लेना चाहिए कि ऐसा होने पर ये होगा, होगा अपने पुरुषार्थ से अपने कार्य से, लेकिन निमित्त उपादान का ये मेल है। निमित्त से काम होता नहीं, कोई निमित्त से काम होता है ऐसा मानता है तो वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, और निमित्त बिना भी काम होता नहीं और निमित्त बिना भी काम होता है ऐसा मानता है वो भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। ये बात गुरुदेव कहते थे। ऐसे तो गुरुदेव के विषय में गलत फहमी थी कि कांजी स्वामी है वो निमित्त को नहीं मानते हैं, ऐसी बात नहीं थी। वो बहुत स्पष्ट कहते थे कि निमित्त से भी होता नहीं और निमित्त बिना भी होता नहीं। एक विचित्र परिस्थिति है और जैन दर्शन में वो बात समझ में आ सकती है। दूसरे दर्शन वाले तो ये कहेंगे कि ये आपकी बात ठिकाना बिना की है, आपकी बात में कोई ठिकाना ही नहीं है, ना निमित्त से काम होता है मानते हैं और निमित्त बिना भी नहीं होता है ऐसा मानते हैं, आपकी आपकी कोई बात का कोई ठिकाना है कि नहीं है ऐसा ही कहेंगे। हाँ, फिर क्या समझना, निमित्त से होता नहीं और निमित्त बिना होता नहीं, समझे क्या हम कि यही वस्तु का अनेकांतिक स्वरूप है, ऐसा ही अनेकांत है। निमित्त नैमित्तिक धर्म भी है और निमित्त से निरपेक्ष भी धर्म है, दोनों धर्म पदार्थ एक साथ धारण करता है, ऐसा आत्मवस्तु विचित्र है। इसलिए तो जल्दी समझ में नहीं आता कि आत्मा कैसा है। प्रवचन सार में दो नहीं चले हैं, परिशिष्ट में अमृतचंद्र आचार्य ने 28 और 29 दो नई में वो बात किया है, 47 नई का वर्णन किया है। उसमें पहला 28वां नई वो लिया है, संस्कार नई, आत्मद्रव्य स्वभाव नई से संस्कार को निरर्थक करने वाला है। क्या आत्म स्वभाव को देखा जाए तो स्वभाव में कोई संस्कार पड़ता नहीं, क्योंकि वो तो त्रिकाल ध्रुव है, अर्थात आत्मा को स्वभाव नहीं से संस्कार निरुपयोगी है, कोई संयोग की असर स्वभाव पर नहीं आते। जैसे किसी को धार काटने में आती है, ऐसे तीक्ष्ण किसी को धार काटने की जरूरत नहीं है, ऐसा तीक्ष्ण कांटा की तरह, कांटा के माफिक जो वो बबूल का कांटा होता है ना, उसको धार निकालनी नहीं पड़ती, वो ऐसे ही कुदरती ऐसे धारदार होता है, ऐसे स्वभाव को कुछ किया नहीं जाता। वही आत्मद्रव्य अस्वभाव नहीं से, स्वभाव नहीं से नहीं, अस्वभाव नहीं से संस्कार को सार्थक करने वाला है। गुरु होता है और गुरु का उपदेश सुनकर भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसी को भी बिना गुरु ज्ञान हुआ है ऐसा एक भी केस बना नहीं है, चाहे वर्तमान भाव में गुरु नहीं हो, अगले भाव में गुरु हो, लेकिन बिना गुरु किसी को संस्कार पड़ा हो ऐसा कभी बनता नहीं है। तो अस्वभाव नहीं से संस्कार को सार्थक करने वाला आत्मद्रव्य है, अर्थात आत्मा को अस्वभाव नहीं से संस्कार उपयोगी है। जिसको स्वभाव से धार नहीं होती है लेकिन संस्कार करके लोहार के वहां धार निकालने में आता है, ऐसा तीक्ष्ण तीर की माफिक जो तीर बनाने में आता है, लोहे का तीर बनता है वो लोहार बनाता है तो बनता है। तो ऐसे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को गुरुगम बिना ज्ञान हो सकता नहीं है। इसीलिए सत्शास्त्रों में गुरु की महिमा बहुत बखानी है, बहुत बखानी है। दिव्य ध्वनि में भी गुरु की महिमा बहुत आई तो गुरु का संप्रदाय अलग हो गया। जैसे सिख वगैरह हैं उसमें गुरु का ही संप्रदाय, कबीर वगैरह उसमें गुरु का ही संप्रदाय है, गुरु को बहुत मानते हैं, वाहे गुरु, बस गुरु मैंने गुरु, गुरु मैंने भगवान। तो क्योंकि उसको दिव्य ध्वनि में भी महिमा बहुत आई और शास्त्र में भी गुरु की महिमा बहुत आई है। नियम सार है अपना शास्त्र, बहुत अध्यात्म की प्रधानता वाला शास्त्र है। इतनी अध्यात्म की प्रधानता है अध्यात्म तत्व की कि वहां एक समय की क्षायिक केवल ज्ञान आदि के पर्याय को भी परद्रव्यम परभावम हेयम ऐसा बोला है। वही पद्म प्रबलधारी देव जब गुरु की बात आती है तो उतना विनम्र होकर बात करते हैं कि गुरु के चरण की का की कृपा से ही हमको जो कुछ हुआ है वो हुआ है। अमृतचंद्राचार्य भी यही कहते हैं कि हमारे परम गुरु और अपरम गुरु से ही, इसके अनुग्रह से, अनुग्रह मैंने कृपा, हमारी परिणति में ये लाभ हुआ है। तो बिना गुरु भी ज्ञान नहीं और गुरु ज्ञान कर देता है वो बात भी नहीं है, क्योंकि शिष्य का ज्ञान तो शिष्य की आत्मा में से निकलेगा, वो तो गुरु की आत्मा में से नहीं निकलेगा। फिर भी अनादि मिथ्या दृष्टि को यही एक वस्तु स्थिति है कि पावे नहीं गुरु गम बिना, यही अनादि स्थिति। सवाल ही पैदा नहीं, वो सवाल तो पैदा होता ही। तो यहाँ जो अपने गुरुदेव का वचनामृत चल रहा है वो वचनामृत में वो बात है कि अगर किसी को भी साक्षात गुरु के योग में बीज ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको स्वभाव का लक्ष्य होता है, स्वभाव का विश्वास प्रतीत आती है, उनके ज्ञान में भाव भाषण होता है और उनकी रुचि में अकेले स्वभाव की ही रुचि रहती है। और जब ऐसा होता है तो इसका पुरुषार्थ की दिशा बदल जाती है, वहाँ से वो स्वभाव सन्मुख मिथ्या दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि नहीं कहते उनको, मिथ्या दृष्टि कहते हैं, लेकिन इसका वर्ग अलग है। स्वभाव सन्मुख मिथ्या दृष्टि, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, तो वहाँ से उनकी दिशा है बदली है तो दशा भी आगे जा करके बदल जाएगी। यह सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका है। सम्यक दर्शन की ये सम्यक दर्शन पहले होने वाली एक भूमिका है, ये क्रम है। सम्यक दर्शन एक दशा है और उसके आगे एक शर्त है। क्या शर्त है? कि भाव भाषण होना चाहिए, पुरुषार्थ में स्वभाव सन्मुख की दिशा आनी चाहिए। इसके पहले सम्यक दर्शन किसी को होने वाला नहीं है। जैसे केवल ज्ञान मुनि दशा भावलिंगी मुनि दशा बिना नहीं होता, ये शर्त है। कोई सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि कितना भी पुरुषार्थवंत हो, भरत महाराजा थे, ऋषभदेव भगवान के सुपुत्र भरत महाराजा अभी सिद्धालय में विराजमान है इनके आत्मा, वो इतने पुरुषार्थवंत थे कि छह खंड की लड़ाई लड़ते लड़ते वो निर्विकल्प दशा में आते थे। यहाँ लड़ाई पूरी हुई, आपके अपने ध्यान के कक्ष में गए, निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में आ जाते थे। संस्कार के कार्य को छोड़ करके भी वो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में आ जाते थे। फिर भी केवल ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता। जब वो मुनि बने, सप्तम गुणस्थान में आरूढ़ हुए, बाद में आठवां नौवां दसवां बारहवां गुण स्थानांतर मूर्ति में आया और केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, लेकिन मुनि हुए तब। तो भावलिंग मुनि दशा बिना किसी को केवल ज्ञान नहीं और भावलिंग मुनि सम्यक दर्शन बिना कोई हो सकता नहीं। चाहे त्याग कर लो, दीक्षा ले लो, और पंच महाव्रत 28 मूल गुण निरतिचार पालन करो, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं तो सच्चा मुनिपना भी नहीं, वो द्रविलिंग मुनिपना है। ऐसे सम्यक दर्शन की पर्याय को भी यह शर्त है पूर्व भूमिका के, कि श्रद्धा में, ज्ञान में, रुचि में और लक्ष्य में जहां तक अपना स्वभाव नहीं आएगा और पुरुषार्थ की दिशा स्वभाव सन्मुख नहीं होगी वहां तक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है, ये पूर्व भूमिका है। और इस पूर्व भूमिका की शर्त वो है कि प्रत्यक्ष सत्पुरुष का योग चाहिए, और प्रत्यक्ष सत्पुरुष का योग को भी शर्त वो है कि उनको पूर्णता का लक्ष्य दृढ़ मोक्ष चाहिए, अमलीकरण होना चाहिए और अंतरात्म वृत्ति उत्पन्न होनी चाहिए, जो अपने 674 नंबर के पत्र में पढ़ा गोपाल देव के वचनों में। तो ऐसा पूर्णता के लक्ष्य बिना शुरुआत नहीं होती है वास्तविक रूप से, वो बात तो गुरुदेव ने आज से 60 साल पहले कही है। कब कही है? आज से 55 साल पहले कही है, 95 के साल में राजकोट में प्रवचन हुए थे आत्मसिद्धि शास्त्र पर, तो उसमें वो बात रही है। हाँ, हो सकता है उसके निमित्त से भी हो सकता है, वो आए पत्र में, एक पत्र में वो बात है। बीज ज्ञान देने वाला बीज ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, जिसको खुद को बीज ज्ञान नहीं है उसको उससे बीज ज्ञान कहाँ से मिलेगा? मतलब जो लेने वाला इससे आगे होना चाहिए, ऐसा लिखा है, इससे आगे होना चाहिए। तो इससे आगे बीज ज्ञान जिसको होता है उससे भी लाभ होता है। विश्वास आता है, प्रतीति आती है, यथार्थता की प्रतीति आती है, वही सम्यक्त्व का अंग है। क्या जो यथार्थता होते है वही सम्यक्त्व का अंग है। इसलिए तो आज रात्रि चर्चा में वही बात चलेगी कि एक गुण को यथार्थपना कैसे लागू होता है, श्रद्धा के परिणमन को यथार्थता कैसे लागू होती है, ज्ञान के परिणमन को यथार्थता कैसे लागू होती है, चारित्र के परिणमन को यथार्थता कैसे लागू होती है, सम्यक्त्व कैसे लागू होता है, वो विषय थोड़ा सूक्ष्मता से विचार करने योग्य है और समझने योग्य है।
भावासन वाले अंतर की स्थिति का प्रति रहेगा
जी,
भावासन वाले अंतर की स्थिति कैसी होती है?
ये तो कहा कि उसके श्रद्धा में, ज्ञान में, रुचि में और लक्ष्य में स्वभाव है, और उसका जो वीर्य है वो स्वभाव सन्मुख आया है। अंदर की स्थिति में पुरुषार्थ की दिशा बदल गई है, और अकेले पुरुषार्थ की दिशा नहीं बदली है, ज्ञान की भी दिशा बदली है, क्योंकि ज्ञान में स्वभाव लक्ष्य में आया है, जो लक्ष्य है वो ज्ञान के पर्याय है, और ज्ञान का भी दिशा वहां से बदली है, और वीरी की दिशा भी वहां से बदली है। मतलब किसी को मुख्य नहीं करता है, एक स्वभाव के लक्ष्य में स्वभाव की ही मुख्यता रहती है, और स्वभाव इतना महान है, इतना महान मैंने कितना, साक्षात सिद्ध पद, प्रकट सिद्ध पद, क्या निरावरण सिद्ध पद, स्वभाव का आवरण नहीं है, आवरण तो पर्याय में होता है, और प्रत्यक्ष सिद्ध पद, उसको अनादि से देखा नहीं और ज्ञान में वो चीज आगे देख लिया, तो इसकी मुख्यता छूटेगी कैसे? ऐसा कौन सा पदार्थ विश्व में है कि जिसको मुख्य किया जाए? है कोई अपना सिद्ध पद से कोई ऐसा कोई विशेष पदार्थ है क्या? बढ़कर कोई पदार्थ है क्या कि जिसकी मुख्यता हो सके? सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे भाई, प्रकृति में ऐसा नहीं होता है। आपने अपने घर में किसी फर्नीचर या कोने के कुछ थोड़ी छोटी सी जगह में सर्प की पूंछ देख ली, क्या देखा? सर्प नहीं देखा पूरा, हाँ, आधा फुट या एक फुट पूंछ बाहर रह गई थी और वो बाकी का अंदर चला गया था, फर्नीचर के पीछे या दर के अंदर चला गया। वो कमरे में कोई सोएगा क्या? भी ओढ़ करके सो जाओ, देखेंगे तो भय होगा ना। अब नहीं देखना है, ओढ़ लो, अपन चादर ओढ़ लो, चादर ओढ़ करके सो जाओ। हाँ, ऐसा करो पलंग पे सो जाओ, नीचे मत सोना, नींद आएगी क्या? हाँ, एक सर्प की पूंछ देखने वाले को नींद नहीं आती तो साक्षात सिद्ध परमात्मा को देखकर किसी को किसको नींद आएगी? वो को हाँ, वहां भय होता है, यहां निर्भयता होती है, वो बात जरूर है, उल्टी सुलटी बात है कि वहां भय होता है, यहां निर्भयता हो जाती है। अरे मैं तो शाश्वत पर स्वरूप हूं, शाश्वत विचार ये अवस्था में शुद्धि अशुद्धि कितनी रही वो भी मुख्यता नहीं करेगा। समल विमल न विचारिये, यही सिद्धि नहीं और, ऐसी मुख्यता आ जाती है कि अनादि से जो पर्याय की मुख्यता थी, पर्याय में अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, पर्याय में ये हुआ कि नहीं हुआ, निर्विकलता हुई कि नहीं हुई, पुरुषार्थ हुआ कि नहीं हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, सब छूट जाता है, कोई मुख्यता नहीं रहती है और पर्याय का ज्ञान सहज रहता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि पर्याय का ज्ञान नहीं रहता है, ऐसा नहीं है।
पूर्णता का जिसको लक्ष्य होता है, पूर्णता का जिसको लक्ष्य है, वैसे जीव की भी यही दशा होती है, वो लक्ष्य कभी छोड़ता नहीं है, चाहे वो किसी भी अशुभ कार्य में हो, चाहे शुभ
कार्य में हो, नहीं छोड़ता।
वहां ऐसी स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है तब तो पूर्णता का लक्ष्य बनता है, फिर वो तो आगे बढ़ा जाती
है,
उसकी तो और दशा विकसित हुई है।
ये पूर्णता का लक्ष्य पहले हुआ, भाव भाषण में पूर्ण स्वरूप का लक्ष्य हुआ और तब लक्ष्य यथार्थ हुआ, द्रव्य पर्याय की संधि हो गई। अकेला स्वभाव का लक्ष्य पूर्ण दशा के लक्ष्य बिना किसी को होता नहीं, और कोई कहते हैं कि हमको है तो वो यथार्थ नहीं है। वो बीच में बात होता है, वो बीच में होता है, निष्प्रही महात्माओं को अभेद भाव से नमस्कार, वो बीच में आता है, बीच में वो दशा आ जाती है, तो आ जाती है,
आ जाती नहीं, वो आए बिना वो दशा विकसित नहीं होती
है। वो तो है, ये घड़ा आड़ा हुए बिना सीधा होता है ऐसा कौन कहेगा? और कहेगा तो वो क्या समझदार है क्या? ऊंधा घड़ा पड़ा है, वो आड़ा हुए बिना सीधा हो गया, ऐसा कभी हो सकता है? तो उसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहने की जरूरत भी नहीं है, और जो कहने की जरूरत है तो ये हमारी करुणता है, ट्रेजेडी है कि हमको ये बात कहनी पड़ती है। वास्तव में ये बात कहने की कोई जरूरत है क्या कि ये बात को बीच में आए बिना? सत्शास्त्रों में इसका उल्लेख कम है, ऐसा क्यों? ऐसा एक प्रश्न सामने आता है कि ये बात कहने की जरूरत शास्त्रकार को नहीं लगी, उतने निम्न स्तर के लोग इनके सामने नहीं थे जब शास्त्र रचना हुई तब, कि ये बात कहने की जरूरत पड़े। जैसे यहाँ हमने कहीं बोर्ड नहीं लगाया, लिखने की जरूरत नहीं पड़ी कि धूम्रपान करना मना है, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, ऐसा हमने कहीं नहीं लगाया। क्यों? कि इतना निम्न स्तर में यहाँ लोग आते नहीं, कोई अपने 100 आदमी में से एकाध कोई स्मोकिंग करता भी होगा, हो सकता है, लेकिन उतना तो जानता है कि स्वाध्याय हॉल में बीड़ी नहीं पी सकते, सिगरेट नहीं पी सकते, ये मंदिर है, शास्त्र जी का वो भी मंदिर है, भगवान का भी वो मंदिर है, मंदिर में नहीं पिया जाता, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना निम्न स्तर का जो लोग है वो यहाँ आते नहीं। ऐसे महान आचार्यों ने जो शास्त्र लिखा उसमें इसके सामने इतने निम्न स्तर के लोग नहीं है कि प्रत्यक्ष गुरु चाहिए ऐसा उसको कहना पड़े, ये जरूरत नहीं लगी थी, वो तो बात स्थापित हो चुकी थी, उसका निषेध कहीं भी नहीं था, आजकल इसका निषेध है, तो इसकी स्थापना भी कृपालु देव ने बहुत किया, कृपालु देव ने प्रत्यक्ष सतगुरु का विषय की स्थापना बहुत की, 100 साल पहले किया, तो वहां से वो स्तर चला चालू है। लेकिन ये कहना बहुत जोखिम है, ये कहना बहुत जोखिम है, कई लोग ये तर्क करते कि कृपालु देव ने तो बहुत किया लेकिन गुरुदेव ने क्यों नहीं किया। तो सत्पुरुष, खुद सत्पुरुष के विषय में कहे ये क्या उचित लगता है क्या? तो नहीं लगता है। हाँ, कुछ बेंसरी का जब विषय सामने आया तो बहुत कहा, ये ज्ञानी थे तो इनके लिए बहुत कहा, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कहा, इनके लिए कहा कि जितना भी बहुमान करो इतना कम है।
821 में तो कहा है,
827 है, 831 है, 5 नंबर के पेज में है। अपनी चमड़ी उतार कर, जीवंत चमड़ी हो, मुर्दे की नहीं, अपनी जीते जी चमड़ी उतार कर गुरु के हेतु जूते बनाए, गुरु के पैर में जूते नहीं हो और उसका पग जलते हो, मई महीना है ना, उनाले के दिन में, गर्मी के दिन में, तो अपनी चमड़ी उतार कर गुरु हेतु जूते बनाए तो भी उपकार से ऋणी न हो सके, उपकार से मुक्त नहीं हो सकेगा। कितनी भक्ति होती है, कि गुरु भक्ति कैसी होती है कि गुरुदेव ने प्रसंग आया तो सब किया है, सामने जो बात आई है तो सब बात बता चुके हैं।
ये चमड़ी मिली इसीलिए, मुक्त को ऐसा लगना चाहिए कि जो मेरे को चमड़ी मिली है वो इसीलिए मिली।
ऐसा गुरु आदि का उपकार होता है, इसके बजाय जो उनके उपकार का गोपन करता है वह तो अनंत संसारी है। गुरु का उपकार का जो गोपन करता है वो कैसा है? अनंत संसारी है। गोपन मैंने छिपाना, गोपन मैंने छिपाना, तो बात जब प्रसंग आया है तो गुरुदेव ने वो बात भी कही है, नहीं कही है वो बात नहीं है। बहुत बात आया अस्खलित प्रवचन में प्रश्न पूछते हैं तो वांचन में विक्षेप पड़ता है, प्रश्न पूछनार के प्रश्न समझाता नहीं, तो मैं दोहराऊंगा, लेकिन प्रवचन में प्रश्न नहीं पूछना चाहिए वो बात तो यथार्थ नहीं है। जब भी किसी को जिज्ञासा होती है वो प्रश्न तो पूछ सकते हैं, अपन कोई उपदेशक नहीं है कि हम उपदेश देते हैं आप सुनते रहें, अपन तो सत्संग करने के लिए बैठे हैं, सत्संग में तो विचार का आदान प्रदान मुक्त रूप से होना चाहिए। तो प्रश्न अगर मैं दोहराना भूल जाऊं तो आप मुझे ध्यान दिला देना कि ये प्रश्न है, वो माइक पर से समझ में आएगा तो उसका उत्तर में भी इंटरेस्ट आपको आएगा। प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो हो सकता है कि उत्तर किस प्रश्न का चलता है वो समझ में नहीं आए, तो लिंक नहीं बैठे, लेकिन प्रश्न तो होना चाहिए। प्रश्न तो हम इनवाइट करते हैं, हम प्रश्न को तो बुलाते हैं कि आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। ऐसे सुनते रहने से इतना फायदा नहीं है जितना प्रश्न के उत्तर से फायदा होता है। इसका कारण यह है कि प्रश्न के काल में जब जिज्ञासा होती है तब ज्ञान में विचार की भूमिका में उत्तर का स्थान पाने का एक अवकाश विशिष्ट प्रकार से बन जाता है। इसलिए प्रश्न है वो भूमिका इसलिए है अच्छी है कि सत्शास्त्रों में भी शास्त्र रचना शास्त्रकर्ताओं ने प्रश्न उठा उठा करके उत्तर दिया है। इसका मतलब ये है कि प्रश्न जरूरी है, यहाँ पर ऐसा प्रश्न होना चाहिए, और ऐसा प्रश्न होता है तो उसको इसको उत्तर एकदम सेट हो जाता है। जिसको प्रश्न ही नहीं है वो सुनते रहते हैं तो कभी ऊपर से भी चला जाता है, क्योंकि प्रश्न पूछने वाले को ऊपर से जाएगा नहीं। इसलिए स्वाध्याय का विषय आगे कम बढ़े तो भी इसकी चिंता नहीं करनी कि ये दो पंक्ति क्यों चली, एक ही बोल क्यों चला, एक ही वचनामृत क्यों चला, ऐसा नहीं लेना चाहिए, ये जरूरी है। हाँ, प्रश्न ऐसे लेना है कि जो चालू विषय के अनुसरण में आगे पीछे इसकी भूमिका का होना चाहिए। विषय कुछ चलता हो और हम कैसा भी प्रश्न फेंके ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चलता विषय है उसको तो खोद खोद करके छनछेड़ छनछेड़ करके उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। गुरुदेव तो कहते थे कि इसको छनछेड़ो, जबकि गुरुदेव तो एक महान उपदेशक थे, अपन कोई ऐसा कोई महान उपदेशक नहीं है, अपने तो सत्संग करते हैं तो उसमें तो आपस में एक दूसरे की चर्चा होनी जरूरी है। कहते हैं कि यह सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका है, यही सम्यक दर्शन का उपाय है और अन्य कोई भी उपाय नहीं है, अस्ति नास्ति दोनों से बात कर दी कि यही उपाय है और अन्य कोई उपाय नहीं है। हाँ, फिर तो दूसरा विषय आया है, 831 में जो बात है ना उसमें फिर दूसरा विषय चला, इसलिए हमने वो बात को नहीं लिया कि फिर किसको सुनना, कि जैसे तैसे को सुनना नहीं, ऐसा लिया है किससे सुने समझे। इसका ही जिन्हें विवेक नहीं है और जो भी प्रवचन देता है सबका सुनो, वे तो आत्मा को समझने के योग्य नहीं है और पात्र भी नहीं है, ऐसा बात लिया है। वो तो बात तो अपने को गुरु उपकार की बात का अनुसंधान नहीं बैठता, इसलिए नहीं लिया। विषयांतर तो नहीं करते ना, तो इस तरह से एक सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका जो नियमात क्रम से होती है उसका उल्लेख 210 नंबर के गुरुदेव श्री के वचनामृत में हमें मिलते हैं। अब इसके पीछे भावभाषण का ही एक दूसरा वचनामृत है 236 नंबर का, दो नंबर के पेज में दूसरा वचनामृत है 236 नंबर का। समझ के द्वारा ज्ञान में जैसे जैसे भावभाषण विकसित होता जाता है वैसे वैसे ज्ञान की सामर्थ्य बढ़ती जाती है, और ऐसी बढ़ती हुई ज्ञान सामर्थ्य द्वारा मोह मैंने दर्शन मोह भाव में भाव दर्शन मोह शिथिल होता जाता है। क्या कहते हैं, समझ के द्वारा ज्ञान में भाव भाषण होता जाता है। जैसे जैसे विकसित का गुजराती क्या है, प्रमागम सार विकसित शब्द हिंदी किया ना, वधतु जाए छे, गुजराती में एम लिखू छे। ज्ञान में जेम जेम समझण द्वारा भाव भाषण वधतु जाए छे, तेम तेम ज्ञान नु सामर्थ्य पण वधतु जाए छे, अने ए वधता जता ज्ञान सामर्थ्य वडे मोह शिथिल थतो जाए छे। क्या कहना है, मुमुक्षु की भूमिका की बात चलती है कि समझ के द्वारा ज्ञान में भाव भाषण होता जाता है। वो समझ किस प्रकार की, अपने को वो समझना है कि ये समझ किस प्रकार की, कि जिससे भाव भाषण होवे। समझ दो प्रकार की होती है, एक शास्त्र पढ़ने से जो थियोरिटिकल नॉलेज होता है उसको भी हम समझ कहते हैं, और जो बात समझ में आती है उनको हम वर्तमान परिणमन में लागू करते हैं प्रैक्टिकल साइड से, उसको भी समझ कहते हैं। जैसे कि कोई बहन रोटी बनाती है, तो रोटी बनाती है वो बता सकती है कि ऐसे ऐसे रोटी बनाना है, वो रोटी बनाने की समझ हो गई। लेकिन खुद रोटी नहीं बनाएगा, वहां तक रोटी कैसे बनती है वो समझ नहीं आएगी। साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाना हो तो बैलेंस रख के चलाना है, न इधर लुढ़कना है न इधर लुढ़कना है, ऐसे चलाना है, बैलेंस रख करके चलाना है, वरना गिर जाओगे, टू व्हीलर में तो गिर जाओगे। लेकिन साइकिल पर प्रैक्टिस चलाने के किए बिना बैलेंस कैसे रखना वो समझ में नहीं आता। तो समझ दो तरह की होती है, एक वैचारिक भूमिका की थियोरिटिकल नॉलेज जिसको कहते हैं उसको भी समझ कहते हैं, और प्रैक्टिस करके प्रयोग करके जो ज्ञान उपलब्ध होता है उसको भी समझ कहते हैं। तो यहाँ जो गुरुदेव बात करते हैं, भाव भाषण वाली बात करते हैं, वो प्रैक्टिकल साइड की समझ की बात है। देखो हर जगह कोई स्पष्टीकरण थोड़ी ना आता है, हर जगह थोड़ा स्पष्टीकरण आता है कि समझ का अर्थ यहाँ क्या लेना, हर जगह नहीं आएगा। वो तो पढ़ने वाले को समझना है या कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। जैसे भाव भाषण के विषय में वही परमागम सार के 601 नंबर के वचनामृत में वो बात आई है, इसमें नहीं है, ग्रंथ में है। जिसके पास ग्रंथ हो वो साथ में रख लेना, कभी ये रेफरेंस इसमें से इसमें पुरवार पर शब्द आएगा। जैसे रोटी के आटा को केलवे छे मैंने गढ़ते हैं, ऐसे आत्मा को ज्ञान से गढ़ना चाहिए और भाव भाषण होना चाहिए। यहाँ भाव भाषण की बात लिया है 601 में। तो रोटी के आटा में पानी डाल दिया इसलिए रोटी नहीं बनेगी। एक थाली में त्रास में आटा निकाला, डिब्बे में से और पानी डाल दिया तो रोटी बन जाएगी क्या? कि पानी डाल करके उसका जो पिंड बनाना है वो अच्छी तरह गोंद करके उसका पिंड बनाया जाता है। बिना गोंदे सिर्फ आटा में पानी डालने से रोटी नहीं बन सकेगी।
समझ का विपर्यास रहते हुए आज्ञाकारी हो सकता?
समझ का विपर्यास से तो आगे का हो ही नहीं सकता, लेकिन समझ में विपर्यास नहीं हो फिर भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो तो भी भाव वासन नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। विपर्यास वाले का तो पता चलता ही नहीं है, जो शास्त्र पढ़ करके भी उल्टा समझता है उसको तो भाव वासन होने के कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो शास्त्र पढ़ करके सही समझता है उनको भी उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, तभी भाव वासन आएगा, बिना प्रैक्टिस भाव वासन आने वाला नहीं है। और उसी को अमलीकरण का स्टेज कहते हैं, उसी को उपदेश का अवधारण करने की वृत्ति कहते हैं, और यही वृत्ति में आए बिना किसी को सही समझ नहीं आती।
है?
हाँ हाँ, वो विषयांतर हो जाएगा, बाद में लेंगे। समझाते समय रहा अने समझाते समय गया, ऐसा पत्र है अस्ति नास्ति से, उसका अर्थ कृपालु देव ने किया है, तो वो बात थोड़ा विषय अलग हो जाता है। अब चलता है भाव भाषण का विषय। भगवान कहते हैं इसलिए मैं मानता हूं, वो बात नहीं है। क्या गुरुदेव कहते हैं? भगवान कहते हैं या गुरु कहते हैं इसलिए सच है, वो बात नहीं है। अपने आप से भाव भाषण होना चाहिए कि मैं ऐसा महिमावंत चैतन्य पदार्थ हूं, ऐसा अपना स्वरूप की जितनी महिमा है उतनी ज्ञान में भाषित हो, वो स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए। और ऐसे चैतन्य स्वरूप के सन्मुख होने से ही संसार से के दुख से मेरा छुटकारा होगा, ऐसा भाषण होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। भाषण होना चाहिए मतलब लगना चाहिए। भाव भाषण है वो फीलिंग स्टेज का विषय है, थिंकिंग स्टेज से आगे जा करके पहले विचार में आता है, बाद लगने लगता है तो भाव भाषण होता है। अपना साक्षात सिद्ध स्वरूप है वो लगने लगता है। जैसे अभी क्या लगता है कि मैं फलाना फलाना मनुष्य हूँ, मेरा नाम फलाना फलाना है, मैं पुरुष हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं जैन हूँ, मैं इस गांव में रहने वाला हूँ, इस देश में रहने वाला हूँ, इस परिवार वाला हूँ, इस पैसा वाला हूँ, इस इज्जत वाला हूँ, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? ये लगना बंद हो जाएगा, भाव भाषण होने से ये लगना बंद हो जाएगा और मैं साक्षात सिद्धपद स्वरूप हूँ ऐसा लगने लगेगा। जब ऐसा लगने लगेगा तब समझना कि भाव भाषण हुआ है। तो ऐसे भाव भाषण जैसी जैसी प्रैक्टिस होती है वैसे भाव भाषण आने लगता है, और भाव भाषण आने लगता है तो ज्ञान में उतनी निर्मलता हुई, ज्ञान में उतनी सामर्थ्य मैंने क्षमता हुई यानी योग्यता हुई, और ऐसा योग्यता होने से सामर्थ्य बढ़ने से दर्शन मोह शिथिल हो जाता है। जो मिथ्यात् का भाव है वो कमजोर हो जाएगा, उसकी शक्ति है वो हीन होती जाएगी। जिसको स्वरूप का भाव भाषण होता है उनका दर्शन मोह बहुत गल जाता है, तब वो ऐसी स्थिति बनती है, वही भाव भाषण का स्टेज है। इसलिए फिर उपशम सम्यक दर्शन का अवसर आता है, वरना किसी को दूसरे को आता नहीं है। नहीं, वो विजुलाइज बना है, विजुलाइज होता है। तो विजुलाइज को मैं ऐसा है कि निधि ध्यासन कहते हैं स्वरूप के विषय में, उसको निधि ध्यासन शब्द लागू पड़ सकता है, ले सकते हैं, वो ले सकते हैं स्वरूप के विषय में निधि ध्यासन के ले सकते हैं।
समझ में आ गया है, ऐसा सोचने के बाद और ऐसा
कहने के बाद ऐसा प्रदर्शित करने के बाद उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है।
हाँ बढ़ता है,
वो समझना चाहिए।
हाँ वो भी समझना चाहिए, जिम्मेवारी तो है ही अवश्य जिम्मेवारी, ये तो हायर द स्टेज हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो है ही। यहाँ तक रखें, आगे का विषय कल के साथ।